हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। कंधों पर बहुत जिम्मेवारियां हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत हल्के रहते हैं। इजी और बिजी का बहुत सुंदर बैलेंस है, और जब भी कोई नया ग्रुप आता है, दीदी अपना अमूल्य समय निकालकर अवश्य आते हैं। बाबा मम्मा दादियों से जो पालना ली है उसकी भासना देते हैं, और स्वागत टोली देकर मुख भी मीठा कराते हैं। तो हम दीदी के मुखारविंद से वो भासना भी अनुभव करेंगे, भट्टी की सफलता के लिए प्रेरणाएं भी प्राप्त करेंगे, और अंत में स्वागत टोली भी प्राप्त करेंगे। सुनते हैं दीदी से।
ओम शांति। मधुबन प्यारे प्यारे बाप दादा के श्रेष्ठ तपस्वी चरित्र भूमि और हमारी एडवांस पार्टी की मम्मा दादी दीदी अन्य जो विशेष यज्ञ के फाउंडिंग में फाउंडेशन के मुख्य दादियां रही हैं और दादाएं रहे हैं, एडवांस पार्टी की विशेष चरित्र भूमि कर्म भूमि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है और स्वागत है। तो आप सभी को देख करके बाप दादा वतन से कितना न खुश हो रहे होंगे, क्योंकि बाबा जो हैं वो हमेशा बच्चों के दिल की आवाज़ सुनते हैं। बाबा को मालूम है ये मेरे कितने लाडले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। चाहे हिंदी कम समझते भी होंगे, लेकिन आपकी जो स्नेह की भावना है वो बाप के पास पहुंच जाती है। हमें याद आता है कि जब बाबा से मिलते थे साकार में या अव्यक्त में भी, कर्नाटक या साउथ इंडिया के भाई बहनें मिलने के लिए आते थे, तो बाबा के पास आकर के बैठते और बाबा मुरली चलाते तो ऐसे एक्सप्रेशन उनका होता था कि जैसे वो सब समझ रहे हैं। फिर बाबा से पूछा गया, बाबा ये भाषा तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो इनको इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। बाबा कहते थे भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी स्नेह की भाषा यही जानते, ये इनके स्नेह बाबा से प्यार, बाबा से जो प्यार की लगन है, जो इन्हें प्राप्ति की अनुभूति है, वो बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। तो इसलिए अपने लिए ताली बजाओ, ठीक है ना, अपने लिए ताली बजाएंगे ना, क्योंकि आप सबकी भाषा भल कैसी भी हो हिंदी समझते हैं, लेकिन जो मन का प्यार है वो ऐसा प्यार तो और किसी का नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं किस तरह से ये बच्चे बाप को अपना साथी बना करके आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो जब हमको बताया कि हैदराबाद संजीवा रेड्डी नगर है, यही वहाँ से आए ना, और उससे संबंधित सेंटर के भाई बहने आए हैं, तो मैं सोच रही थी कि संजीवा रेड्डी नगर क्या होता है। संजीव मीन्स जहाँ हरियाली हरियाली, जहाँ पर खुशहाली है, जहाँ गार्डन में जाओ ना, जहाँ पर चैतन्य फूल है, तो वहाँ चैतन्य फूल होता है, एक है जड़ फूल एक है चैतन्य फूल। तो जहाँ पर चैतन्य फूल होते हैं वहाँ की खुशबू कितनी अच्छी होती है, वहाँ के वाइब्रेशन कितने अच्छे होते हैं, वहाँ के जो भी निकलेगा वहाँ से उसको भी वो खुशबू के लहरें उसके पास पहुँचती है। तो आप सभी बाबा के ऐसे रतन हैं जो आपके द्वारा ज्ञान योग गुण धारणा और शक्तियों के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। तो आप सभी बाबा के बगीचे के सुंदर सुंदर फूल हो ना, बाबा के बगीचे के फूल। बाबा साकार में बाबा क्या करते थे, जब मुरली चलानी होती थी ना, मुरली से पहले बाबा गार्डन में जाते थे। मालूम है कौन से बगीचे में जाते थे? पता है कौन से बगीचे में जाते थे? जहाँ आप बैठे इसी बगीचे में, ये जो नीचे है ना झोपड़ी के पास, ये फूलों का बगीचा था बाबा के टाइम पर। तो बाबा इस फूलों के बगीचे में जाते थे, बाबा इस बगीचे का ध्यान भी रखते थे। और मुरली के पहले बाबा कई तरह के फूल अपने साथ क्लास में लेकर के आते थे। कभी कभी बाबा गुलाब का फूल, कभी बाबा मोतिया का फूल, कभी बाबा और प्रकार के चमेली के फूल, कई प्रकार के फूल लेकर के आते थे। और क्लास में आकर के बच्चों को कहते थे, देखो ये फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन तुम सब के सब कौन हो? बाबा की बगिया के चैतन्य फूल हो। और दूसरा एक छोटा सा बगीचा था, बगीचा नहीं छोटा सा स्थान। आपने पहला पहला गेट में जब एंटर करते ना, पहला पहला ऑफिस जो आप देखते छोटा सा है, जहाँ पर बाबा ने हमको बिठाया है, तो वो बाबा के टाइम पर एक छोटी सी पहाड़ी थी। और उस पहाड़ी में ही छोटी सी पहाड़ी, उसके अंदर गमले आदि सब रखे हुए थे। तो वहाँ पर भी बाबा जाते थे और वहाँ से भी बाबा फूल लेकर के आते थे। और ऑफिस जो हमारा ऑफिस है ना, ऑफिस के बाद जो थल्ला है, ये पहाड़ी है, थल्ला नहीं है, पहाड़ी है। बाबा वहाँ खड़े होकर के सबको दृष्टि देते थे। तो बाबा के होते हुए फिर वहाँ पर एक सिटिंग रूम बनाया गया, ताकि जब विस्टर्स आते थे वो आकर के वहाँ बैठते थे, कोर्स करते थे। फिर बाबा की जब मुरली चलती थी, तो उस मुरली को सेंटर्स पर भेजने के लिए एक छोटी सी लिथो मशीन होती थी, ऐसे करके मुरली को कॉपी करते थे, फिर वो वहाँ पर रखी गई। तो बाबा क्या कहते थे, ये एक बहुत बड़ा भाग्य है जिसने बाप को पहचाना, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसको बाबा ने अपना बनाया, और बहुत बड़ा प्राप्ति है दुनिया की भेंट में जो बाबा ने आप सबको अपना बनाया। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, ठीक है? भाग्यशाली कौन है बताओ? हैं, मैं तो हूँ, आप सब हो क्या? हैं, सारी भाग्यशाली? अच्छा, सौभाग्यशाली कौन है? आज माइक आवाज क्यों कर रहा है, साउंड कर रहा है, या तो बीच में आवाज कर रहा है? सौभाग्यशाली कौन है? बस थोड़े, पद्मा पद्म भाग्यशाली है? देखो ये सब पास हो गए, आपने इनको इतना अच्छा पढ़ाया, ये सब पास है। नहीं तो जब कभी किसको पूछते हैं ना, तो उस समय पास नहीं हो तो कहेंगे नहीं, हम सौभाग्यशाली पद्मा पर भाग्यशाली में हाथ नहीं कर। ओम शांति। अभी ठीक है आवाज? अभी नहीं कर रहा है ना, तो पहले वाला आवाज कर रहा था। तो देखो, भाग्यशाली उसको कहते हैं जिसको बाबा ने खुद ही चुना है, अपना बच्चा बनाया है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई बच्चा किसी अच्छे घर में जन्म लेता है, या कोई बहुत रिलीजियस घर में जन्म लेता है, कोई धनवान के घर में जन्म लेता है, तो क्या कहते हैं, इसका भाग्य बहुत ऊंच है, इसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, तब तो इसका जन्म जो है इतने अच्छे घर में हुआ है। तो हमने जन्म लिया या बाबा ने पैदा किया है? अब बताओ, आपने जन्म लिया? नहीं, बाबा ने ही पैदा कर लिया ना। आज बाबा ने कहा ना, बाबा जो है ब्रह्मा मुख द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। आपको सिलेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए बाबा ने कितनी मेहनत किया, कितनी मेहनत किया आपके लिए। तो देखो, ये सारी टीचर मैंने कहाँ कहाँ से आपको ढूंढ ढूंढ करके बाबा के बच्चे बनाए, बाबा के बच्चे बनाए ना। तो भाग्य अपना आप मिल गया, उसके लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। बाबा ने चुना, अपना बनाया, खुशी का खजाना दे दिया, वरदानों से भरपूर कर दिया, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर दिया और बाबा ने हर प्रकार से बच्चों को भरपूर कर दिया। ज्ञान में आते खुशी में नाचने लगे। पहले क्या था, ये छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे कोई ना कोई प्रकार का टेंशन होता रहता था, लेकिन बाबा के बने सब टेंशन खत्म हो गया। तो बाबा कहते हैं कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिसको बाप ने कहाँ कहाँ से चुन चुन करके अपना बनाया है। तो आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा कि ये ईश्वरीय फैमिली है और ईश्वरीय फैमिली में भी कौन है, ईश्वर के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे होने के कारण आपस में भाई भाई हैं और ब्रह्मा बाप के बच्चे होने के कारण आपस में क्या है, भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो बाबा ने इतना बड़ा टाइटल दे दिया, ये कोई कम भाग्य थोड़ी है। फिर बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कितने सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली कैसे हैं कि बाबा रोज ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं, हर रोज करते हैं। बाबा रोज हमको वरदान देते हैं, रोज बाबा पालना करते हैं, हर रोज बाबा जो हैं अमृत वेले से लेकर के रात तक बच्चों की कितनी खातरी करते हैं। आपने देखा ना परसों भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्या कहा, दुनिया वाले कहते हमारा गुरु था, वो ऐसा था ऐसा था, तुम बच्चे क्या कहेंगे, हमारा बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे ऐसे हैं, बाबा हमारे साथ हैं, बाबा हमको साथ ले जाएंगे, बाबा हमारी पालना करते हैं, बाबा हाथ पकड़ करके चलाते हैं, बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अब मैं बाबा की कहानी सुनाती हूँ। तो बाबा के टाइम पर क्या था, बाबा जब भी जहाँ भी इधर आंगन में खड़े होते थे, जहाँ भी बाबा होता था तो सारे बच्चे दौड़ करके बाबा के पास पहुँच जाते थे। अब हर एक सोचता था मैं बाबा के पास जाऊँ। जब अव्यक्त बाबा आते ना तो उस समय बाबा जब मुरली चलाने के बाद टोली खिलाते सब दौड़ते हाथ खड़ा करते हैं, अब मेरे को मिले मेरे को मिले ऐसे करते हैं ना, तो सब जंप करते हैं। अब बाबा तो अकेला है, हर एक सोचता था कि हम बाबा का हाथ पकड़े, तो बाबा सबको खुश करते थे। तो बाबा ने क्या किया, एक बार बाबा ने कहा आओ बच्चे, तो बाबा ने कहा चलो मेरा हाथ पकड़ो। और कितने लोग हाथ पकड़ेंगे, एक ही पकड़ेगा ना, दूसरा हाथ पकड़ेगा। बाबा ने कहा आओ बच्चे, पांच बच्चों ने पांच उंगली पकड़ ली, पांच बच्चों ने बाजू पे हाथ रख दिया, फिर पांच बच्चों ने इधर पांच उंगली पकड़ ली, पांच बच्चों ने इधर बाजू पे हाथ रख लिया, 15-20 ने कंधे पे हाथ रख लिया। बाबा ने कहा देखो ऐसा बछड़े माल कहीं मिलेगा है, ऐसा बच्चे जिसको इतने बच्चे हो, अगर कोई हमको आपको हाथ कहेंगे हटो ना यहाँ क्यों करते हो। बाबा कहते आओ बच्चे, कल्प में तो एक ही बार मिले हो, सारे कल्प में तो नहीं मिलोगे ना, और यही संगम युग है जिसमें तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तो फिर बाबा ने कहा विराट रूप देखना हो तो यहाँ देखो, बाबा खड़े हैं, इधर बच्चे खड़े हैं, आगे बच्चे खड़े, पीछे बच्चे खड़े हैं। जब आप देखो ना कभी कोई केक काटना होता है तो केक काटने वाले क्या होता है, चार पांच काटेंगे, पीछे वाले क्या करते हैं अपनी बहन जी के कंधे पर हाथ रख देते हैं, कंधे पर हाथ रख देते हैं ना, सोचते हमने भी केक काटा। तो बाबा के कंधे पर हाथ रखा मीन्स बाबा तो कंधे पर बिठा करके उड़ा के ले जाते हैं, उड़ा के मीन्स उमंग उत्साह की लहरें देते हैं। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बाबा बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे। बाबा कहते थे बाप के घर में आए हैं, कितने दूर से आए हैं, थके हुए आए हैं। रोज बाबा रात को उनसे मिलते भी थे और पूछते भी थे बच्चे कैसे हो। तो जैसे आज आप देखो कोई घूमने जाता है, कहीं पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पर रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाता है, लोग रास्ते में सड़क पर पड़े रहते हैं, कोई उनको खाने को नहीं मिलता है, कोई मिला या ना मिला, लेकिन यहाँ तो बाबा के घर में सबको आराम से रहने को मिला ना, सब आराम से है ना, हैं कोई तकलीफ तो नहीं है, है कोई तकलीफ नहीं ना। बाबा को बता देंगे ये बच्चे लाडले हैं, बहुत खुश हैं, हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं ना, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बाबा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर दूसरी बात, बाबा क्या कहते थे, अब भट्ठी में आए हैं तो भट्ठी में क्या करना है आपको, भट्ठी में विशेष जो बाबा ने कहा है उस पर ही आप सबको विशेष ध्यान देना है, साइलेंस में रहना है, इधर उधर की बातों में बुद्धि योग नहीं लगाना है। फिर क्या करते हैं बाबा को, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा मेरा योग नहीं लगता है, कोई ऐसा जो कहे बाबा मेरा योग नहीं लगता है, कोई हाथ खड़ा करो, सबका लगता है, फिर तो नहीं कहोगे ना, कभी कहना नहीं, फिर मेरी बुद्धि इधर जाती है उधर जाती है, मैं क्या करूं, मेरा योग कम लगता है, कोई बता दो, हाथ खड़ा कर दो, हम बता देंगे आपको, हैं है, सबका योग ठीक लगता है, बुद्धि इधर उधर तो नहीं जाती है, शर्म के मारे नहीं बता रहे हैं ना शर्म के कारण नहीं बता रहे ना। अब मैं आपको बाबा की कहानी सुनाती हूँ ना, सभी क्या करते हैं नहीं बता, कोई यहाँ नहीं बताएगा, कोई दूसरे को बोलेगा अच्छा योग कैसे करना है, आप चार्ट कैसे लिखते हो हमको बता दो, फिर कहेंगे हम 2 घंटा योग करते हैं, बाबा ने कहा ना परसों भी कि 8 घंटा अपने लिए रखो, 8 घंटा योग करो। तो बाबा के पास क्या करते थे बच्चे, कई बच्चे बाबा को पत्र लिखते थे, चार्ट लिखते थे, बाबा मैंने 16 घंटा योग किया, बाबा कहते झूठा चार्ट साइड में रख दो, इतना कहाँ कर पाएंगे, बीच बीच में तो माया भी आती है, खेल करने के लिए आती है, माया बहुत तंग करती है, माया नचाती भी है और जोर से थप्पड़ मारती है, कैसे मारती है बाबा ने कहा ढूंसा मारती है, घुंसा मुंह पीछे कर देती है, अब आगे का मुंह पीछे हो जाए तो क्या होगा, कार्टून लगेगा ना, तो कार्टून दिखाई देगा। तो बाबा ने कई बार बच्चे बाबा को कहते माया को कहो, बाबा माया को कहो वो नहीं आए, तो बाबा क्या कहते मैं माया को ऑर्डर करता हूँ जाओ मेरे बच्चों के पास, जोर से लड़ाई करो, जोर से देखो, देखो मेरे बच्चे कितने मजबूत हुए, तो देखो बच्चे कहाँ कमजोर और बाबा बच्चों को कितना मजबूत बनाते हैं। तो आगे जब बाबा से मिलते थे ना, जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले अव्यक्त बाप दादा से बाबा के कमरे में मिलते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा से बाबा की हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, फिर बाप दादा से ओम शांति भवन में मिलते थे। तो पहले तो बाबा से जब हम मिलते थे, एक एक को बाबा बहुत टाइम देते थे, किसको 5 मिनट, किसको 10 मिनट, किसी को इतना टाइम देते थे। फिर बाबा ने कहा था कि समय आएगा मिलने की विधि में परिवर्तन होगा, तो ओम शांति भवन में बाबा जब मुरली चलाते थे उसके बाद ग्रुप ग्रुप मिलते थे, तो उस समय एक विदेश का ग्रुप आया हुआ था, आते ही रहते थे, एक ने कही थे, तो एक भाई था विदेशी, वो कहता था मैं बाबा से एक प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न क्या कि मेरा योग नहीं लगता है बाबा, मैं आपको भूल जाता हूँ। बाबा के पास गए ना, तो बाबा ने उसको वरदान दिया सदा का सहज योगी, तो सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्या हुआ, कहा बाबा ये तो कहता मेरा योग नहीं लगता, तो बाबा ने कहा ये क्या करता है, कहता है बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मैं आपको कैसे याद करूँ, बाबा आज तो मैं बहुत पावरफुल योग करूँगा, बाबा मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। तो कितना योग करता है बाबा ने कहा सबसे ज्यादा योग तो यही करता है, बाबा बाबा तो यही कहता है, बाबा मैं आपको याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो बाबा से ही तो बात कर रहा ना, किसी और से तो बात नहीं कर रहा। तो ब्राह्मणों का भी एक नियम है, सिवाय बाबा के और किसी को याद ही नहीं करते, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा ये कार्य कर दो, लेकिन याद तो हम कर रहे हैं बाबा को परंतु वो हम स्मृति नहीं रखते हैं। तो बाबा ने कहा याद का अर्थ है स्नेह स्वरूप बनना, बाबा से अगर प्यार है तो प्यार से करो, जैसे बाबा कहते ना मेरे लाडले बच्चे, बाबा ये थोड़ी कहता ये बच्चा सुनता नहीं है, बाबा को बताते थे ना बाबा ये बच्चा पुरुषार्थ ठीक नहीं करता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते बताओ तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे, ब्रह्मा बाबा कहते मेरे बच्चे तैयार हो रहे हो जाएंगे, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहते थे ये बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते, सुनते नहीं है, देखते नहीं है, हम क्या करें, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हम तो कह देंगे ये सुनते नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो कभी नहीं ऐसे कहते थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे ये लाडले हैं, प्यारे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा बच्चों को इतना प्यार करता है, तो हम बच्चे जब अपने मन के अंदर बाप के प्रति प्यार रखते हैं, तो ये प्यार ही योग है, प्यार की लगन ही योग है, बाबा के साथ मिलन मनाना ही हमारा ये योग है। तो बाबा कहते हैं इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, आप में से है जो कहते हैं हमने बाबा को नहीं देखा? जिन्होंने बाबा को नहीं देखा हाथ खड़ा करो। हैं, आप सबने देखा है बाबा को? अच्छा, जिन्होंने बाबा को देखा वो हाथ खड़ा करो, वो भी आधे आधे हैं। अरे बाबा तो हमारे साथ है, हैं? ये कह ही नहीं सकते हमने बाबा को नहीं देखा है, कह सकते हैं? बाबा ने कहा मैं साथ हूँ, साथ ही लेके जाऊंगा, छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अगर कोई कहे नहीं हमको नहीं जाना, बाबा ने कहा मैं जबरदस्ती ही लेके जाऊंगा। अब फिर बाबा की बात सुनाती हूँ। तो बाबा, मैं तो साकार बाबा को देखा, ऐसा नहीं है, मैंने तो देखा रही भी हूँ। अच्छा, बाबा के पास लंबा टाइम भी रहे हैं। तो बाबा जब साकार में मुरली चलाते थे हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा के मुरली चलाते चलाते बीच में बाबा खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के एक एक को दृष्टि देते थे। और जैसे ही दृष्टि देते थे तो सब बच्चे क्या होता था, ऐसे जैसे बिल्कुल सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं और सूक्ष्म फरिश्ते का अनुभव करते थे। तो मैं क्यों बता रही हूँ, इस भट्टी में भी साकार बाबा आपके सामने आएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे। क्योंकि ये जहाँ हॉल में आप भट्टी कर रहे हैं ना, इस हॉल की विशेषता बताती हूँ। ये है बाबा के टाइम पर ये स्थान पहाड़ी था, और इस पहाड़ी पर बाबा बैठ करके तपस्या करते थे। बाबा का आपने एक फोटो देखा ना, ऐसी तपस्या कर रहे, वो इसी पहाड़ी का है। और बाबा यहाँ बैठ करके तपस्या करते थे, फिर आंगन में दादियाँ खड़ी होती थी, गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दौड़ दौड़ करके आते थे, बाबा के साथ बैठते थे, मम्मा दादियाँ दादे सब बैठ के यहाँ तपस्या करते थे। तो ये बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी थे। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो बाबा के बच्चे बढ़ने लगे। अब बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, एक बार बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, अब क्या किया जाए। तो बाबा का प्रोग्राम पांडव भवन के आंगन में रखा था, बाहर ऑफिस के बाहर स्टेज बनाई थी, और सुबह के टाइम नाश्ता और दोपहर का भोजन सुबह 10 से 12 के बीच में हो जाता था, शाम को 4 से लेकर 6 बजे रात का भोजन, और 6 बजे फिर से स्टेज बन जाती और बाबा उसमें आते थे। और चारों तरफ ब्राह्मण बैठे हैं, तो ऐसा लगता था जैसे कि फरिश्तों की महफिल लगी हुई है। तो फिर बाबा ने तो कह ही दिया था बच्चे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, तो फिर क्या प्लान किया गया, अब क्या किया जाए। तो फिर इस पहाड़ी को तोड़ करके, आधी पहाड़ी तोड़ करके इसको ये हॉल बनाया गया 1975 में। और 75 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ आते थे और अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे, और हम सब बच्चे यहाँ बैठे, यहाँ बाबा और हम यहाँ बिल्कुल पास में बैठते थे। बाबा के टाइम पर उस समय कोई भी सोफा नहीं था, एक कुर्सी होती थी दीदी मनमोहिनी के लिए। अच्छा, तो बाबा उस समय यहाँ पर हम बच्चों को वरदानों से भरपूर करते थे। तो इस हॉल की विशेषता ये है, एक तो साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी है, दूसरा अव्यक्त बाप दादा का वरदानी हॉल है। तो आपको डबल फायदा इसमें मिलेगा। वैसे तो आपके पास देखो हैदराबाद में रिट्रीट सेंटर है, कहाँ कहाँ जाके बठियां करते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे हॉल हैं। ये तो बाबा का हॉल कितना सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं है, बहुत पावर है, बहुत प्यार है, बाबा साथ है, और बाबा विशेष आप सबको विशेष अनुभव भी कराते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब के सब कौन है, मेरे लाडले बच्चे हैं। और बाबा के पास जब आते थे ना, तो बाबा बहुत प्यार से सबकी पालना करते थे। तो आप सबकी ज्ञान और योग और विशेष बाबा आप बच्चों की खातरी करेंगे। तो बाबा के टाइम पर सब बच्चे कहाँ सोते थे, हम सब एक हॉल होता था, हॉल में सब सो जाते थे। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कहते, बाबा कहते देखो मेरे पटराजे पटरानी आ गई, सब के सब हॉलों में जमीन में सोते थे। तो बाबा हमेशा के ये नहीं कहते थे कि जमीन पर सोए, बाबा कहते पटराजे हैं, ये पटरानी है। और अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, कहाँ बैठे हो हैं, अब कहेंगे बाप के दिल तख्त नशीन राजे और रानियां। क्या हुआ बोलो, बाप के दिल तख्त नशीन महाराजा है महारानियां है। बाबा कभी नहीं कहता कि ऐसे हो, बाबा कहते हैं तो मेरे सारे ही होवनहार भविष्य राजधानी के ऐसे प्रिंस प्रिंसेस हैं और वहाँ पर ऐसे श्री कृष्ण की राजधानी में खेलने वाले हैं, श्री कृष्ण के पास रहेंगे। अच्छा आपका महल कितना बड़ा होगा माताएं बताओ हैं, वहाँ सचिव में आपका महल कितना बड़ा होगा हैं, कितना बड़ा बोलो, छोटा ही चाहिए ना, बड़ा क्या करेंगे हैं, बड़े में कौन रहेगा हैं, कितना बड़ा होगा भाई बताओ कितना बड़ा होगा, ओम शांति भवन जितना बस अच्छा कितना बड़ा चाहिए आपको हैं, 100 एकड़ बस। अच्छा और कितना चाहिए, 100 एकड़ तो कुछ नहीं है, शांति वन जितना हो जाएगा। अरे आप बोलो ना, पूरा आंध्र प्रदेश आपका होगा हैं, और क्या करना है आपको, क्या करना है, पूरा आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ले लो, आपको कौन रोकने वाला है, वहां तो जितना चाहिए लो। अच्छा कमरे में भी, मकान में क्या होगा, कई प्रकार के पुष्पक विमान होंगे, एक पुष्पक विमान होगा जो उसमें बैठा बटन दबाया सारे महल के अंदर चक्कर लगाए हैं, एक पुष्पक विमान होगा बगीचे में पहुंच जाएंगे, एक पुष्पक विमान होगा जो आप जाकर के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, एक पुष्पक विमान होगा जो लंदन की, उसमें लंदन नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा, नाम नहीं होगा, जगह तो होगी ना, वहां पहुंच जाएंगे। और सफाई क्या करनी है आपको, साफ सुथरा है, कोई गंदा तो होगा नहीं, गंदी तो है नहीं, वहां जानवर भी कोई ऐसे दुख देने वाले नहीं है। तो आपको जितना चाहिए लो, जितना सोना डालना डालो, जितना पहनना पहनो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब कुछ आपका है, आप ही महाराजा महारानी हो और आप ही विश्व के अंदर राज्य करने वाले हो। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की राजधानी में राज्य करने वाले, श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले कौन हो, प्रिंस प्रिंसेस हो। जब छोटे छोटे श्री कृष्ण के साथ खेलने जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना, तो आप सब प्रिंस प्रिंसेस हो। तो बाबा फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और स्वागत के साथ साथ जब भी बाबा के बच्चे आते थे तो बाबा बच्चों का मुख मीठा कराते थे। और बाबा के मैं बताती हूँ, कभी कभी बच्चे आते थे ना तो पीछे गेट से आते थे, कभी बाबा वहाँ खड़े होते थे, बाबा उनको रिसीव करते थे, बाबा कहते थे आओ मेरे लाडले बच्चे। कभी कभी पार्टी आती थी मेन गेट से तो कई बार दादी वहाँ खड़ी होती थी और दादी उनसे मिलती थी। फिर सब भाई बहने बाद में कहते थे कि अभी दादी से हमको मिलने जाना है, तो हम कहते थे अभी तो मिले हो क्यों जाना है, कहते हमने टोली कहाँ खाई है ना, टोली मीन्स टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, टोली खाना मीन्स बाबा से मिलना। तो बाबा के पास आते थे तो बाबा हमेशा कहते थे ये मेरे लाडले बच्चे हैं, और साथ साथ कहते थे ये मेरे टोल पुट हैं। टोल पुट समझते हो नहीं, टोल है ये सिंधी शब्द टोली, जैसे ना हिंदी में कहते हैं स्वीट्स, तेलुगु में क्या बोलते हैं मिठाई को हैं, मिठाई, मिठाई है ना, तेलुगु में मिठाई बोलते हैं और इंग्लिश में स्वीट्स बोलते हैं, पंजाब में मीठी चीज बोलेंगे या मिठाई बोलते हैं, तो सिंधी में बोलते टोली, टोली मीन्स मिठाई है। तो बाबा हर बच्चे को अपने हाथ से टोली खिलाते थे। और मुरली के बाद देखो सेंटर पर रोज क्लास के बाद टोली नहीं मिलती है, मिलती है कब कोई बहन आएगी, कोई प्रोग्राम होगा, कुछ होगा, तब मिलेगी। यहाँ मधुबन में हर रोज क्लास के बाद टोली मिलती है। बाबा बच्चों को अपने हाथ से टोली खिलाते थे, तो आज आप सबका भी मुख मीठा कराएंगे। और साथ साथ एक बात बतानी है कि यहाँ माउंट आबू में अभी गर्मी का टाइम है ना, तो माउंट आबू ये फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया में क्योंकि ये जंगल के क्या कहेंगे, कभी भालू कभी ये उनका राज्य है, लेकिन वो अपने फॉरेस्ट में घूमते यहाँ नहीं आते हैं। लेकिन अभी गर्मी है तो कभी कभी पानी पीने के लिए वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि गर्मी में पानी तो चाहिए ना, तो पानी पीने के लिए निकलते हैं। उधर नक्की लेक साइड होते, इधर नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी बाबा के बच्चे इतने योगी बन जाते हैं, सुबह 4:45 बजे योग पूरा होगा, 6 बजे तैयार हो जाएंगे, तो अकेले घूमने चले जाते हैं। फिर भालू तो खुश हो जाएगा कि संजीवा रेड्डी से इतने अच्छे अच्छे आए हैं, खुश हो जाएगा ना आपको देख के, है लेकिन आएगा नहीं। परंतु जब भी जाओ मॉर्निंग टाइम अकेले नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना, वो आएगा नहीं, वो तो अपने लिए पानी पीने आता है, उसको पानी नहीं मिलता, कभी कहाँ कभी उधर घूमता है, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। तो इस बात का बाबा कहते हैं, तन को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है, तो हर चीज का ध्यान देना है। बाकी क्लास के बाद जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग टाइम पर कभी अंधेरा होता है ना, तो उस समय अकेले नहीं जाएं, मिस नक्की लेक साइड। बाकी क्लास के बाद जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रोशनी हो जाती है, लाइट हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, आपका बहुत बहुत बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है।